नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। यानिक सिनर ने इंडियन वेल्स टेनिस ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। न्यूजीलैंड में होने वाले एफआईएच हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला टीम भाग लेंगी और अरुंधति रेड्डी फरवरी माह के आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित। चर्चा की शुरुआत करते हैं टेनिस से। इंडियन वेल्स टेनिस ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब यानिक सिनर ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में सिनर ने दानिल मेदवेदेव को 7-6, 7-6 से हराया। मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज को मात दी थी। बेहतरीन प्रदर्शन रहा था इनका भी। जनरली हम जितने भी ग्रैंड टाइटल से चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन ले ले, तो अभी हाल फिलहाल में अल्काराज ने जोकोविच को हराया था। तो जो फाइनल्स का मुकाबला जो हम अमूमन देखते आ रहे, अल्काराज हो, जोकोविच हो या फिर सिनर हो, इनके ही बीच हम ज्यादातर देखते थे, लेकिन अभी मेदवेदेव उभर के आए तो अच्छा प्रदर्शन रहा उनका भी।
देखिए, मेदवेदेव टॉप 4-5 में हमेशा रहे हैं जब से पिछले कुछ सालों में, पर पिछले 1-1.5 साल में अल्काराज और सिनर का जो डोमिनेशन था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बाकी खिलाड़ी जो उसके आसपास के हैं वो अक्सर आपको क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल में बाहर होते दिखते थे। यहाँ पे बहुत रेयर है, लेकिन अल्काराज जो हारे हैं और उससे पहले जोकोविच को भी हार का सामना करना पड़ा था, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है, क्योंकि हालांकि हर जनरेशन में 2-3 प्लेयर्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। पिछली, इससे पहले वाला जो था उसमें फेडरर और नडाल ने काफी लंबे समय तक अपना दबदबा बनाया था, टॉप 2 ही थे। जब जोकोविच ने आके उसको ज्वाइन किया था एक तरह से, हालांकि एंडी मरे भी थे, लेकिन ये तीन टॉप पे हमेशा थे। उसके बाद अल्काराज और सिनर की बात हो रही थी, लेकिन जोकोविच ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए थे, उन्होंने ये दिखाया कि एज और इंजरीज और हर चीज के बावजूद वो हैं अभी। तो इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि मेदवेदेव प्लेयर अच्छे नहीं थे या उनका परफॉर्मेंस नहीं है या उन्होंने या वो फाइनल्स में या टाइटल जीते नहीं है, पर बाकी दोनों का डोमिनेशन इतना ज्यादा हो गया था कि बाकी खिलाड़ी कहीं नजर नहीं आते थे, और आते भी थे तो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाते थे। और उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह से ड्रॉ बनते हैं, सिर्फ टेनिस में नहीं, किसी भी उसमें खेल में जब ड्रॉ बनते हैं इंडिविजुअल में, तो कोशिश यही होती है कि जो टॉप 2 हैं वो अलग अलग हाफ में रहें ताकि उनका मुकाबला बिल्कुल फाइनल में ही जाके हो। उस वजह से भी ये होता है कि ये दोनों अक्सर फाइनल में नजर आते थे और बाकी खिलाड़ियों को इनमें से किसी एक के साथ फेस ऑफ करना ही पड़ता था। अच्छी चीज ये है कि क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों आगे और कई साल खेलेंगे, और मेदवेदेव एक जनरेशन पहले के ही खिलाड़ी हैं, इनके पहले से खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा साल मेदवेदेव के पास भी नहीं होंगे अभी। तो मुझे लगता है कि किसी भी खेल में मोनोपोली या डुओपोली बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। खिलाड़ी के लिए बिल्कुल अच्छी चीज है, देखने वालों को मैं ये नहीं कहूंगी कि बोरियत होती है, लेकिन जब भी कुछ नया आता है या कोई ऐसा निकल के आता है जो आपको लगता है कि एक मोनोपोली या डुओपोली को चैलेंज कर रहा है, तो ऑडियंस के लिए ये हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है कि कोई नया चेहरा आया है जो आपको चैलेंज कर रहा है। या बीच में अगर हम देखें तो वावरिंका ने जिस तरह से कुछ साल पहले कमबैक किया था, काफी समय टॉप पे रहे, फिर वो बाहर हो गए, बिल्कुल टॉप 25-50 से बाहर चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया एक लास्ट गैस जो होता है 2-3 साल पहले, तो लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। अंडरडॉग के साथ हमेशा रहते हैं और आपको हमेशा खेल में अंडरडॉग्स चाहिए होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करें, वरना फिर वो खेल नहीं रह जाता है, वो फिर आपको एक रूटीन हो जाता है जैसे बाकी नौकरियां होती।
जी बिल्कुल। और वहीं महिला सिंगल्स में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने एलिना रिबाकिना को 3-6, 6-3, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2023 और 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें उप विजेता रही थी, तो लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते आ रही हैं और इस बार तो उन्होंने खिताब अपने नाम किया।
जो मैंने मेन्स के लिए बोला था वही चीज है यहाँ पे। बहुत लंबे समय तक सेरेना विलियम्स ने डोमिनेट किया था, उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी आए थे, और अगर हम देखें पिछले करीब 2-3 साल से जिस तरह से सैबलेंका ने डोमिनेट किया है एक तरह से बड़े टूर्नामेंट्स में खास करके, तो बीच बीच में हो सकता है एक आध टूर्नामेंट में उनको थोड़ा सा अपसेट हो, पर जो कंसिस्टेंसी है डोमिनेशन की वही मैं बात कर रही थी कि सैबलेंका और रैबाकिना की जिस तरह से राइवलरी, एक उभरती राइवलरी बन के आ रही है पिछले 1-1.5 साल में, उसमें आपको लगातार हर बड़ा टूर्नामेंट जो होता है उसमें इन दोनों में से कोई एक या अक्सर दोनों आपको फाइनल्स में या सेमीफाइनल तक नजर आते ही आते हैं। उस चीज को थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब यहां पे भी एक आध ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो इनको चैलेंज कर सके, वरना जैसे मेंस में जा रहा था वैसे ही विमेंस में भी होता नजर आ रहा है।
जी, चर्चा कर लेते हैं बैडमिंटन पर। ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे। यह प्रतियोगिता कल से 22 मार्च तक फ्रांस में खेली जाएगी। एचएस प्रणॉय कंधे की चोट के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारत के पूर्व शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मैग्नस जोहानसेन का सामना करेंगे। आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत ली चिया हाओ के खिलाफ करेंगे। थारुन मन्नेपल्ली अपने पहले मैच में वोंग त्जू वेई से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज का सामना केंता निशिमोतो से होगा। एचएस प्रणॉय चौ तियन चेन से, मिथुन मंजूनाथ डोंग तियान याओ और शंकर सुब्रमण्यम ली जिया जिया से मुकाबला करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा सुपनिदा केटेथोंग से भिड़ेंगी, जबकि मालविका बंसोड़ का सामना श्यो युन से होगा। रक्षिता रामराज मनामी सुइद से, जबकि अनमोल खराब अरिन से भिड़ेंगी। आकर्षी कश्यप हमवतन श्रियांशी वलीशेट्टी से मुकाबला करेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी का सामना लाई पो यू और त्साई फो चेंग से होगा और ए आर पोचाना का सामना अपने ही देश के ए डोडा वरापू से होगा। महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम का मुकाबला रुई हिरोकामी और साइका होबारा से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स केंद्र।
बहुत सारे रिसेंट में टूर्नामेंट खेले गए, चाहे मलेशिया ओपन की बात कर ले, इंडियन ओपन हो गया, इंडोनेशिया मास्टर्स हो गया, अभी हाल ही में इंग्लैंड ओपन हुआ था, थाईलैंड मास्टर्स, तो इन सभी टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी जो रहे शटलर रहे, वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल या फिर फाइनल्स तक पहुंचे। अभी हाल ही में लक्ष्य सेन ने इंग्लैंड ओपन के फाइनल का खिताब जीत ना सके तो उपविजेता रहे थे, लेकिन क्या ये हर्डल है जो ये खिलाड़ी पार नहीं कर पा रहे हैं? मतलब फाइनल तक पहुंचते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे।
देखिए, एक तो पिक एंड चूज बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे टूर्नामेंट हो गए हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कि या तो इंजरीज हो रही हैं या इंजरीज से रिकवर होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है अब ये सिलेक्ट करना कि वो किस में खेलेंगे किस में नहीं खेलेंगे, और अगर आप उस चीज को अपना रिहाब को नहीं मैनेज कर पाते हैं तो लगातार आप खेलते रहेंगे, आपकी इंजरी पे भी असर पड़ेगा, फिटनेस पे असर पड़ेगा, और आप इसी तरह फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड से आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जो रैंकिंग्स की बात है, जो पिछले साल लगातार श्रीकांत बोलते आ रहे हैं कि अब जो फॉर्मेट हो गया है रैंकिंग पॉइंट्स का, उसमें अगर आप टॉप 750 और 1000 में और 500 में आप क्वालिफाइंग इवेंट्स नहीं होते हैं, तो अगर आपकी रैंकिंग्स वहां पे नहीं पहुंचती हैं तो आपके लिए वापस कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड पूल हो गया है जो उस लेवल पे उस सर्किट में टॉप में खेलता रहता है, क्योंकि आपको और जो नीचे है थोड़ा सा उनके पास क्योंकि उतने रैंकिंग पॉइंट्स नहीं होते तो वो ऊपर नहीं आ पाते, और ऊपर नहीं आ पाते तो अनलेस आपको कोई वाइल्ड कार्ड उस तरह से स्पेशल केस एंट्री मिले आप उस लेवल पे खेल नहीं पाते हो, तो मैक्सिमम आप 300 तक जा पाते हो जहां पे क्वालिफाइंग इवेंट्स होते हैं, और वहां पे अगर आप खेलते हो तो आपको रैंकिंग, आपको जीतना या एटलीस्ट फाइनल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको एटलीस्ट इतने रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं कि आप एक एक सीढ़ी करके ही सही लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सके आप। तो जिस तरह से एक टू टीयर सिस्टम टाइप का हो गया है कि जो टॉप में 750 और 1000 में खेलते हैं वो उसी सर्किट में खेलते रहते हैं, और जो नीचे हैं वो ऊपर जा नहीं पाते हैं, जब तक आपके पास इतने सारे टाइटल्स या फाइनल्स डायरेक्टली एक के बाद एक ना हो जाएं 300 लेवल पे, या और 100 में तो और भी कम हो गए हैं
जी।
तो उस वजह से भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब उस लेवल के खिलाड़ियों से खेल ही नहीं पाएंगे तो जब आपको मौका भी मिलेगा तो आप उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे खेलने का उस लेवल पे। श्रीकांत जैसे खिलाड़ी जो है उनके पास है क्योंकि वो पहले खेल चुके हैं, पर अब पिछले कुछ समय से वो नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्लेयर्स का खेलना बहुत जरूरी है, पर कहीं ना कहीं ये शायद मुझे लगता है फेडरेशन, प्लेयर्स और कोचेस को आपस में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से हो। घर पे जब तक इवेंट्स नहीं होंगे तब तक वो एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा।
जी, चर्चा कर लेते हैं हॉकी पर। भारतीय महिला हॉकी टीम न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 15 से 21 जून तक होने वाले FIH नेशंस कप में भाग लेंगी। भारत के अलावा मेजबान न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, कोरिया, चिली, स्कॉटलैंड और फ्रांस भी हिस्सा लेंगे। पिछले सत्र की अगर हम बात करें महिला टीम की, तो उतना अच्छा नहीं रहा था, 9 टीमों में सबसे निचले स्थान पर रही थी भारतीय टीम। तो क्या कुछ उम्मीदें की जाए इस बार?
देखिए, नेशंस कप खेलना भारतीय महिला टीम की मजबूरी है अगर इनको वापस प्रो लीग में जाना है तो। पिछले साल लास्ट फिनिश करके रेलीगेट हुई थी और इसीलिए उनको नेशंस कप खेलना पड़ रहा है। उम्मीद है कि शायद बेहतर कर पाएंगी, क्योंकि यहां पे आपको जीतना ही पड़ेगा नेशंस कप अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, और आसान नहीं होगा क्योंकि हमने अभी पीछे क्वालिफायर्स में भी देखा था कि भले ही भारतीय टीम इंग्लैंड से फाइनल में हारी थी, लेकिन उससे पहले चाहे स्कॉटलैंड हो जिसके साथ ड्रॉ खेला, या इटली के साथ भी, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से जीत पाई थी सेमीफाइनल्स में, तो कड़ा मुकाबला हुआ था इटली के साथ। तो अब जिस लेवल पे है, 9वें नंबर पे है लेटेस्ट रैंकिंग में, तो मुझे लगता है कि किसी भी, आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ टॉप टीमों से हारते हैं। एक पॉइंट के बाद आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते हैं, और खेल में तो कभी भी नहीं ले सकते हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि उस दिन आप कैसा खेलते हैं इसी पे रिजल्ट आता है। और आसान नहीं होगा बिल्कुल भी नेशंस कप जीतना, लेकिन जरूरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप प्रो लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो साल के आपको 16-17 बड़ी टीमों के साथ मुकाबला मिलता है खेलने का, टॉप टीयर कंपटीशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा, और वो टीमें भी आपको नहीं मिल पाएंगी क्योंकि उनके लिए प्रो लीग इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपको उस तरह से टाइम नहीं दे पाएंगे बायलैटरल या टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। और अगर आप LA ओलंपिक्स को टारगेट करके चल रहे हैं, जिसके लिए पहले आपको एशियन गेम्स जीतना पड़ेगा या उसके क्वालिफायर्स होंगे वो खेलना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी में अगले 2-3 साल में प्रो लीग में खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है। वरना अगर हम क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो LA में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना सही नहीं होगा।
जी, और वहीं पुरुष टूर्नामेंट 11 से 20 जून के बीच केपटाउन में खेला जाएगा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कोरिया, जापान, वेल्स, मलेशिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम हिस्सा लेंगी। और श्रोता, आपको बता दें कि हॉकी नेशंस कप की शुरुआत 2021 में हुई थी, जो हॉकी प्रो लीग से बाहर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली टीमों का शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंट है। इसमें विजयी टीम को अगले सत्र में प्रो लीग में जगह मिलती है। चर्चा कर लेते हैं पिकल बॉल पर। भारतीय पिकल बॉल संघ ने अप्रैल में होने वाले इंडियन ओपन के चौथे सत्र को PWR 1000 स्पर्धा के रूप में मान्यता दी है। पिकल बॉल बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस का मिश्रित प्रारूप है। हैदराबाद में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता के 56 वर्ग में 1500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि $50,000 है। इस टूर्नामेंट के पिछले 3 सत्र में 19 देश के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जो पिकल बॉल, ये एक नए तरीका का जो खेल है, या सेपक टैक्रो जो है, वो काफी अच्छा है, और जिसको भारतीय सरकार भी अलग अलग जो स्पर्धाएं हैं उसमें प्रमोट कर रही है। चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी, पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और श्रीलंकाई बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा को फरवरी माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। दाएं हाथ की जो तेज गेंदबाज है अरुंधति रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों की T20 सीरीज में 10.11 की औसत से बेहतरीन प्रदर्शन किया था।
बिल्कुल, और बहुत सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीत हमको हासिल हुई थी, जो एक तरह से जो वर्ल्ड कप हम जीते थे उसका कंटिन्यूएशन था। तो मोमेंटम बहुत जरूरी है जिस तरह से हमने देखा, और जिस तरह से भारतीय महिला टीम प्रदर्शन कर रही है पिछले कुछ सालों में, उससे ये आपको समझ आता है कि जो पहले ये कहा जाता था कि पुरुषों के बराबर नहीं है, तो शायद इसलिए भी था क्योंकि पुरुषों के बराबर उनको उतना खेलने को नहीं मिलता था। अब खेलने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है, तो हमें वो डिफरेंस नजर आ रहा है खिलाड़ियों में भी और टीम में भी।
जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने आज कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के मैच की मेजबानी करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद,
नमस्कार।